8 मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी निर्गुण भक्त की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि तथा प्रमुख कवि के रूप में विख्यात हैं। उन्हें मध्यकालीन कवियों की पहली पंक्ति में लाने तथा एक प्रमुख मेजर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने में आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल का योग सर्वोपरि है। शुक्ल जी की दृष्टि जब जायसी की कवि प्रतिभा की ओर गई और उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना, उसके पहले जायसी को इस रूप में नहीं देखा और सराहा गया था। निस्संदेह जायसी को विस्मृत तथा अधूरी और अपर्याप्त पहचान से उबारने और उन्हें सूर तुलसी के समक्ष प्रतिष्ठा देने का श्रेय आचार्य शुक्ल को है। आचार्य शुक्ल पर अनजाने और जानबूझकर भी कुछ लोगों ने ब्राह्मणवाद को प्रश्रय देने, संकुचित सांप्रदायिक दृष्टि को उभारने तथा सगुण भक्त की धारा के प्रति अनावश्यक पक्षपात बरतने का आरोप लगाया है। हम इस आरोप की तफसील में नहीं जाना चाहते और उसकी छानबीन करते हुए उसका निराकरण भी नहीं करना चाहते। यहाँ हम महज इतना ही कहना चाहते हैं कि क्या शुक्ल जी वस्तुतः वह सब होते जो कुछ आरोपकर्ताओं ने उन्हें सिद्ध करना चाहा है, कम से कम मलिक मोहम्मद जायसी जरूर हमारे लिए बेपहचान ही बने रहते। अपनी उस संश्लिष्ट तथा समग्र कवि प्रतिभा तथा अपनी उदार सहृदयता मानसिकता के साथ हमारे सामने न आ पाते, जिस रूप में आचार्य शुक्ल के प्रयासों के तहत उनकी अपनी उदार मानसिकता तथा काव्य मर्मज्ञता का अवलंबन पाकर वे आज हमारे बीच प्रतिष्ठित हैं। हम यहाँ आचार्य शुक्ल की दृष्टिगत सीमाओं को ढकना नहीं चाहते। मूल्यांकन के सिलसिले में जब तक उनके द्वारा हो जाने वाले चूकों तथा अपनाए जाने वाले दोहरे या एकांगी मानदंडों पर भी पर्दा नहीं डालना चाहते, कारण यह सब आचार्य शुक्ल में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर है और वस्तुतः उनमें भी है जो इस प्रकार की उनकी सीमाओं को उजागर कर सकने में सफल हुए हैं। हमारा मूल कथन यहाँ यही है कि आचार्य शुक्ल पर संकुचित सांप्रदायिकता तथा ब्राह्मणवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता और इसका एक प्रमाण तमाम और प्रमाणों के साथ उनके द्वारा किया गया जायसी का मूल्यांकन और मूल्यांकन ही नहीं सूर और तुलसी जैसे भक्ति काल के महान रचनाकारों और भक्तों के समक्ष उनकी प्रतिष्ठा है। संकुचित संप्रदायवादी दृष्टि तथा ब्राह्मणवादी मानों के तहत किसी रचनाकार का और जायसी जैसे रचनाकार का वह मूल्यांकन नहीं हो सकता था जैसा कि आचार्य शुक्ल में हमें उपलब्ध है। जायसी के लिखे 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम। इधर कन्हावत के नाम से जायसी द्वारा लिखित एक अन्य महत्व प्रबंध कृति का उल्लेख हुआ है और उसे प्रकाशित भी किया गया है। कन्हावत की प्रामाणिकता पर संदेह भी किया गया है। हम यहाँ इस सवाल की चर्चा नहीं करेंगे। हमारा इरादा जायसी की मान्य कृतियों का विवेचन विश्लेषण करना भी नहीं है। प्रस्तुत निबंध में हम कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा करना चाहेंगे जो एक बड़े कवि के रूप में हमें जायसी की पहचान कराते हैं तथा जिनके नाते जायसी अपने रचनाकाल के सैकड़ों वर्षों बाद भी हमें अपने लिए जरूरी महसूस होते हैं, हमारी विरासत बनते हैं। इन मुद्दों का संबंध रचनाकार जायसी से भी है और उनके भीतर के मनुष्य से भी, जो उनकी रचनाओं के माध्यम से ही हमारी पहचान के अंतर्गत आता है। जायसी को लेकर अब तक तमाम एकेडमिक चर्चा हुई है, अर्थात उनमें जो रहस्यवाद पाया जाता है वह वहाँ तक भारतीय चिंतन परंपरा का अंग है। वह कहाँ तक भारतीय चिंतन परंपरा का अंग है और कहाँ तक उसमें इस्लामी प्रभाव है? जायसी जिस सूफी धर्म से संबद्ध थे वह सूफी धर्म क्या है और वह कहाँ तक इस्लाम से पृथक है? जायसी ने जो कथा काव्य या प्रेम काव्य लिखा है वह समासोक्ति है कि अन्योक्ति? जायसी तथा कबीर के रहस्यवाद में कौन श्रेष्ठ है, आदि आदि। हम जानते हैं कि ये बातें मूलतः एकेडमिक बातें हैं और जायसी की चर्चा हम जिस रूप में और जिस नाते यहाँ करना चाहते हैं उससे इनका बहुत ज्यादा तथा सीधा संबंध नहीं है। हम जायसी की अपनी पहचान को कुछ दूसरे ही सवालों के माध्यम से उभारना चाहेंगे, क्योंकि हमारा अपना विचार है कि शायद तभी हम आज के संदर्भ में जायसी को अपनी आत्मीयता की परिधि में लिए रह सकेंगे और उन्हें अपनी रचनाकार पीढ़ी की तथा आज के युग की जरूरत भी बनाए रख सकेंगे। जायसी जाहिर है कि प्रबंधकार कवि हैं और उनका अपनी रचना में एक धार्मिक आध्यात्मिक मकसद भी रहा है। प्रबंधकार कवि होने के नाते उनकी कृत विशेषकर पद्मावत में लीक का अनुसरण भी है, अनावश्यक प्रसंग तथा उनका अनावश्यक विस्तार भी है। मतलब कुछ ऐसा, बहुत कुछ ऐसा है जो आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वह कविता की भी बहुत मूल्यवान विरासत नहीं है, किंतु इस पद्मावत में तमाम कुछ ऐसा भी है जो जायसी की बड़ी खरी तथा सशक्त पहचान भी हमें देता है तथा जिसके बीच से एक अत्यंत उदार सहृदय तथा अपनी जमीन से रचे पगे कवि के रूप में जायसी हमारे सामने आते हैं। जायसी जिस युग में हुए वह इस्लाम की भारतीय विजय का युग था। इस्लाम किस प्रकार एक चुनौती बनकर भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बीच आया और उस चुनौती को किस प्रकार झेला गया तथा इसके फलस्वरूप भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की चली आ रही धारा में कैसे उथल पुथल हुई, इन बातों का विवरण इस किताब के कुछ दूसरे निबंधों में हम दे चुके हैं। हम उस सारी चर्चा को यहाँ न दोहराते हुए महज इतना ही कहना चाहेंगे कि एक लंबे साहचर्य के बाद समाज के निचले स्तर पर साधारण हिंदू मुसलमान जनता में एक दूसरे के निकट आने तथा एक दूसरे को समझने का जो भाव पैदा हुआ था, जैसी जैसे सहृदय मुसलमानों ने उस प्रक्रिया को तेज करने में मदद की और अपनी धार्मिक आस्थाओं को कायम रखते हुए वे इसलिए ऐसा कर सके कि वे हृदय के उदार थे तथा तमाम सारी मजहबी तथा धार्मिक विशिष्टताओं, उसूलों तथा विधि निषेधों के एक ईश्वर के सत्य को स्वीकार करते थे तथा यह मानते थे कि उसे महज प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने यह सही कहा है कि कबीर की कठोर उक्तियां हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने का जो कार्य आकांक्षित स्तर पर नहीं कर सके, उसे जायसी जैसे सहृदय मुसलमानों ने सफलता के साथ पूरा किया। सेक्युलर मानसिकता के माने यह नहीं है कि व्यक्ति किसी धर्म विशेष से कोई संबंध न रखे। सेक्युलर मानसिकता के अर्थ यह है कि अपने धर्म पर निष्ठा रखते हुए भी व्यक्ति दूसरे धर्मों का सम्मान करे तथा अपनी धार्मिक निष्ठा को दूसरे धर्मों में निष्ठा रखने वालों से जुड़ने में बाधा न माने। जायसी या कि उनके तत्कालीन अनेक समान धर्म इसी अर्थ में सेक्युलर माने जा सकते हैं। कबीर सरीखा तेजस्वी मानस जरूर उनका नहीं था, परंतु अपने मजहब के प्रति ईमानदार रहते हुए भी उन्होंने दूसरे धर्म मतों को आदर दिया और जिसे मनुष्यता का सामान्य हृदय कहते हैं या जिसे मनुष्यत्व की सामान्य भूमि कहते हैं, उस जमीन पर जिससे भी मिले मनुष्य के नाते मिले, बिना किसी फर्क के या भेदभाव के मिले। हम चर्चा जायसी की भाव प्रवण सेक्युलर दृष्टिकोण की कर रहे थे, उसे आचार्य शुक्ल ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कबीर का उल्लेख यहाँ है वह कबीर की आलोचना नहीं है, जायसी की सराहना जरूर है और जायसी इसके पात्र भी हैं। शुक्ल जी कहते हैं, 100 वर्ष पहले कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। साधु या फकीर भी सर्वप्रिय वे ही हो सकते थे जो भेदभाव से परे दिखाई पड़ते थे। बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोलने लगे थे, जिससे मनुष्यता के सामान्य भावों के प्रवाह में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली थी। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमानों का दास्तान हमजा ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्ग ढूंढने की सलाह भी दोनों कभी कभी साथ बैठकर करने लगे थे। इधर भक्ति मार्ग के आचार्य और महात्मा भगवत प्रेम को सरोवर ठहरा चुके थे और उधर सूफी महात्मा मुसलमानों को इश्क हकीकी का सबक पढ़ाते आ रहे थे। जैसी ग्रंथावली भूमिका 51। आचार्य शुक्ल इस प्रकार भक्ति आंदोलन के उच्छल प्रवाह का संबंध सूफियों से जोड़ते हैं और भक्त की चेतना के उस उठान में सूफी साधकों को का योग स्वीकार करते हैं जो वामाचार में रस लेने वाले या तंत्र मंत्र से जनता को चकित करने तथा उसे भक्ति के सहज पथ से अलग करने वाले संप्रदायों द्वारा गुमराह तथा बाधित की जा रही थी। भक्ति के वैष्णवी आदर्शों का प्रभाव किस प्रकार व्यापक होता गया इसका उल्लेख करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच साझता का आदर्श प्रतिष्ठित हो गया था। बहुत से मुसलमान फकीर भी अहिंसा का सिद्धांत स्वीकार करके मांस भक्षण को बुरा कहने लगे थे। वहीं दो पेज जायसी के या कि सूफी साधकों के सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश करने की यही पृष्ठभूमि है।